दोस्तों, कई बार जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे होते हैं या किसी काम का उत्तरदायित्व आप पर होता है, तो आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो देखने में शायद ठीक न लगें, पर वो होते ठीक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ और भी बहुत कुछ लाती है। जब आप में डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये जान लीजिए कि आपके उस डिसीजन से हर कोई खुश नहीं होगा, पर उचित डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर वही तो सही है। जो सही है उसे करना ही उचित है दोस्तों। और आज की मोटिवेटिंग कहानी है भागवत पुराण से। मैं शैलेंद्र भारती आपको इस कहानी में यह बताने जा रहा हूं कि इस कहानी में विलन है दैत्य वृत्रासुर और हीरो हैं इंद्र। हीरो भी इस कहानी के अंत में विलन ही बन जाता है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं। त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे जिनके पुत्र को इंद्र ने मार दिया था। तब त्वष्टा ने इंद्र से बदला लेने के लिए एक और पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर में बहुत बल था और जितना था उससे भी अधिक बल पाने के लिए वृत्रासुर ने ब्रह्मा की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या सफल हुई थी। अब उसके बल और शक्ति की सीमा शायद अंतहीन हो गई थी। जब ऐसा होता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, पर बल और शक्ति के अलावा वृत्रासुर ने एक और विचित्र वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया था, जो इस तरह था। लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उसकी मृत्यु न हो। बल और वरदान दोनों मिलने के बाद अब वृत्रासुर को रोकना असंभव सा हो गया था। उसने इंद्रालोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। यहां तक कि इंद्र को भी भागना पड़ गया। स्वर्ग से जो देवता भागे थे वे अब पहाड़ों में छुप कर रहने लगे। धर्म के सारे काम रुक गए थे। बहुत समय तक जब कुछ नहीं हुआ तो देवताओं को हार कर महादेव की शरण में जाना पड़ा। सारे देवता शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुखड़ा कह सुनाया। सारी बातें सुनकर शिवजी ने उन्हें समझाया कि उन्हें विष्णु के पास जाना होगा, वो ही उनकी समस्या का हल निकाल पाएंगे। विष्णु जी के पास जब सारे देवता पहुंचे तो उन्होंने सबको समझाया कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है और अभी वृत्रासुर की मृत्यु का समय नहीं आया है। जब तक समय बदलता नहीं तब तक उन देवताओं को वृत्रासुर से संधि कर लेनी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि विष्णु जी ने देवताओं को कूटनीतिक सलाह दी हो। वो इस तरह की सलाह देवताओं को देते रहते थे। वे बोले कि शत्रु पे साम, दाम, दंड और भेद, इनमें से किसी भी एक उपाय से विजय प्राप्त की जा सकती है। वृत्रासुर की आयु समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। उसके आगे विष्णु जी बोले कि वृत्रासुर से मित्रता करने के बाद सारे देवताओं को योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करनी चाहिए। योग माया जी ही सब जीवों की बुद्धि की देवी हैं। जब योग माया जी प्रसन्न हो जाएंगी तब वो वृत्रासुर की बुद्धि को बदल देंगी और उस समय देवता वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। सभी देवताओं ने योग माया की स्तुति शुरू कर दी और उनसे विनती करी कि वो वृत्रासुर की बुद्धि फेर दें ताकि वो उनसे दोस्ती के लिए तैयार हो जाएं। योग माया जी प्रसन्न होकर के देवताओं को सहायता का वरदान दे देती हैं। इंद्र को बात समझ में आ गई थी और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने वृत्रासुर से दोस्ती का प्लान बना लिया। वो वृत्रासुर के सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों में मित्रता हो जाती है। धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगती है। दोनों साथ साथ घूमते फिरते। इस तरह वृत्रासुर को इंद्र पर पूरा विश्वास हो चुका था, परंतु इंद्र जानता था कि वो तो बस मित्रता का छलावा ही कर रहा है। ऐसे में वृत्रासुर के पिता त्वष्टा उसे समझाते भी हैं कि एक बार जिससे शत्रुता हो जाए उससे दोस्ती करना समझदारी नहीं। त्वष्टा कहते हैं कि इंद्र पर भरोसा करना ठीक नहीं, वो कभी भी मौका देखकर उसे हानि पहुंचा सकता है। पर वृत्रासुर नहीं मानता। या तो इसे उसका अभिमान कह लीजिए दोस्तों, या ये कह लीजिए कि योग माया जी ने उसकी बुद्धि हर ली थी। एक दिन इंद्र और वृत्रासुर समुद्र के किनारे घूम रहे थे। उस समय वहां पर कोई भी नहीं था। तब इंद्र के मन में बात आती है कि ये समय वृत्रासुर को मारने के लिए उत्तम है। इंद्र मन ही मन देवी आदि शक्ति को याद करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि वो वृत्रासुर का वध करने जा रहा है और उसे आदि शक्ति की सहायता चाहिए। समुद्र के तट पर उस समय लहरों से झाग बन रही थी। जरा सोच के देखिए दोस्तों, झाग न तो लोहा होता है और ना ही काठ, झाग ना ही सूखा होता है और ना ही गीला। वरदान की सारी शर्तें पूरी हो रही थीं, इसलिए इंद्र उस झाग में अपने वज्र को छुपा देता है। उसके बाद देवी मां उसमें अपनी शक्ति संचार कर देती हैं। इंद्र फिर उसी झाग में छुपे हुए वज्र से वृत्रासुर पर प्रहार कर देता है। वज्र में आदि देवी की शक्ति थी तो उसे सफल तो होना ही था। वृत्रासुर दैत्य था, उसे मारना तो अच्छा काम था, पर इंद्र को इसके लिए कई पाप भी करने पड़े थे। पहले तो उसने मित्र बनके विश्वासघात किया। उसके अलावा वृत्रासुर दैत्य होने के बावजूद बहुत बड़ा ज्ञानी था, इस कारण उसे ब्राह्मण माना गया था। और एक ब्राह्मण को मारने के बाद इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। वृत्रासुर के पिता त्वष्टा ने भी इंद्र को शाप दे दिया कि अपने किए का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। इस कारण से इंद्र को कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। कहते हैं कि जब इंद्र को कहीं भी शांति नहीं मिली तो उसे मान सरोवर में एक कमल पुष्प की डंडी में जाकर के छिपना पड़ा था। सोचिए दोस्तों, सोचिए कि कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी इंद्र ने। वैसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जिस शक्ति से वृत्रासुर मारा गया वो आदि देवी की शक्ति थी, पर उसका निमित्त इंद्र को बनना था। फिर उसने अपने मित्र को धोखा भी दिया और ऐसा उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते किया था। आप जिस जगह पर जिस पोजीशन पर होते हैं वहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं मुड़ सकते, वो तो आपको करनी ही पड़ेंगी और कई बार उनकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और यदि आप अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या करना है इसका डिसीजन आपका अपना ही है दोस्तों। आपके डिसीजन लेने के बाद आपके साथ क्या होता है वो इस सृष्टि के नियम पर आधारित होता है। जो सृष्टि करेगी उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहिए, उसी में सबका भला है। इसी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।